जैसे ही अयांश ने आरवी से कहा, तुम आज से आरवी चतुर्वेदी नहीं, आरवी अयांश मेहरा हो, आरवी मेहरा, समझे? आरवी ने कहा, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दाएं बाएं गर्दन हिलाते हुए बोली। तभी अयांश मुस्कुराते हुए बोला, बादाम नहीं खाए क्या कभी? या याददाश्त कमजोर है? चलो कोई बात नहीं, मैं हूं ना याद दिलाने के लिए, और प्रॉमिस भूलने भी नहीं दूंगा। अभी कुछ घंटे भी नहीं हुए हैं हमारी शादी को और तुम अभी से भूल गई? ये तो गलत बात है माय वाइफ, ऐसे कैसे चलेगा? याद रखो अच्छे से, हमारी शादी आज ही हुई है। देखो तुमने लाल जोड़ा पहना है, मैंने शेरवानी, शादी के कपड़े हैं हमारे और हम यहाँ शादी करके ही आए हैं। तुम अपने ससुराल में हो, याद आया ना? मिसेज मेहरा, शादी? कैसी शादी? झूठी शादी, धोखे से की शादी, जबरदस्ती की शादी। शादी का मतलब ही जानते हैं क्या आप? शादी दो लोगों की खुशी से, मन से, मर्जी से जुड़ा एक प्यारा सा बंधन होता है, एक खूबसूरत सा ख्वाब एहसास, जब दो लोग रस्में कस्में वादे निभाते हुए एक हो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। और आपको तो शादी सिर्फ मजाक लगती है। आपने जो शादी की है वो बर्बादी है, छल किया, गलत किया है। और हाँ, जो मेरे लिए किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं। और मैंने सीखा है, बुरे ख्वाब, बुरे ख्याल, बुरे लोगों से दूर रहो। आरवी चतुर्वेदी बुरे सपने को कभी याद नहीं रखती, अयांश मेहरा। आरवी बोल ही रही थी कि तभी अयांश ने अपनी बाहें आरवी की कमर में फंसाई और उसे अपने करीब खींच लिया। अपने हाथ से आरवी के बाल अपनी मुट्ठी में पकड़ उसका चेहरा अपने पास करते हुए बोला, अब तुम्हें कुछ और याद भी नहीं रहेगा। बुरा ख्वाब और बुरा ये अयांश मेहरा तुम्हारे जहन में हर पल सवार रहेगा। तुम्हारी हर नस रग रग में सिर्फ मैं, चाहकर भी तुम नहीं भुला सकती हो, ना मुझे ना हमारी आज हुई इस शादी को, चाहे जैसी भी हुई हो। और हाँ, जब लड़की की मांग में सिंदूर किसी के नाम का लग जाता है और गले में मंगलसूत्र जो ढाल देता है, तो वो उस शख्स के और उसका सरनेम उस लड़की से जुड़ जाता है। यही होता है ना शादी के बाद। सात फेरे लिए हैं मैंने तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मिसेज मेहरा मेरी पत्नी। इसका सबूत तुम्हारे गले का ये मंगलसूत्र और मांग का सिंदूर है, जो दोनों मेरे नाम के हैं, समझी? आरवी अयांश से दूर होने के लिए तड़प रही थी, अपने बाल छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर अयांश की बाहों की पकड़ इतनी मजबूत थी, उसने बाल भी कसकर पकड़े थे कि वो कसमसाती रह गई पर छूट नहीं पाई। तभी अयांश ने बाल छोड़े और गर्दन पर हाथ रखकर आरवी को और करीब कर लिया। आरवी अपनी आंखें भींच लेती है। छोड़िए मुझे, मेरे नाम से और मुझसे छूट नहीं पाओगे तुम आरवी मेहरा। अब तुम्हारे ख्वाबों में भी मैं ही रहूंगा, तुम्हारे ख्यालों में भी मैं। जहां देखोगी, जिसके बारे में सोचोगी, वो सिर्फ अयांश मेहरा होगा। इतना मजबूर कर दूंगा मैं तुम्हें कि तुम इसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगी। और हाँ, ये तुम्हारी मांग का लाल सिंदूर खुशियों की सौगात नहीं, खतरे का निशान है, जो तुम अपनी मांग में रोज सजाओगी। याद दिलाता रहेगा तुम्हें मुझसे खतरा है। और ये गले का मंगलसूत्र तुम्हें हमेशा एहसास दिलाएगा कि ये ऐसा फंदा है जो तुम्हारे गले से नहीं निकलेगा। राइट मिसेज मेहरा? आरवी अपनी आंखें खोलते हुए बोली, कैसे कोई इतना बेरहम हो सकता है? कैसे? अयांश बोला, बिकॉज आई एम योर डेविल हस्बैंड। आरवी तड़पते हुए बोली, आपको क्या लगता है अब सब कुछ आपके हिसाब से होगा? अयांश बोला, क्या लगता है, ऐसा ही होगा। तुम्हारी सांसें भी मेरी मुट्ठी में, तुम्हारी सोच भी, तुम्हारे तन और मन दोनों पर भी मेरी चलेगी। आरवी बोली, मुझे कठपुतली समझने की भूल मत कीजिए अयांश मेहरा। अयांश बोला, मुझे हल्के में लेने की भूल तुम मत करना, तुम पर मुझे कभी रहम कभी तरस नहीं आएगा। ये सुन आरवी की आंखें छलक गईं, वो सिसकते हुए बोली, एक बेरहम से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अयांश मुस्कुराते हुए बोला, राइट माय वाइफ, एंजॉय योर न्यू जर्नी विद मी। सुना है शादी के बाद खुशियां नसीब होती हैं, पर तुम तो वो बदनसीब हो जिसे मैं खैरात में भी खुशियां नहीं दूंगा। ये सुन आरवी ने गुस्से से अयांश के मुंह पर थूक दिया। थू, खुशियां तो दूर, मैं आपसे भीख भी नहीं मांगूंगी। आरवी की इस हरकत ने अयांश को बहुत गुस्सा दिला दिया और उसने आरवी को जोर से जमीन पर धकेल दिया। आरवी धड़ाम से जमीन पर गिर गई। आह, अयांश आरवी की ओर अंगुली करते हुए बोला, तुम्हारी यही औकात है बड़िश गर्ल। और उसी वक्त गुस्से की आग में तिलमिलाते हुए वहां से घर के अंदर चला गया। आरवी जमीन पर गिरी तो उसकी चूड़ियां टूटी, उसकी कलाई में चुभ गईं, और भी उसे चोट आई, बहुत दर्द होने लगा। पर वो वहीं जमीन पर पड़ी रोते हुए सिसकियां भरती रही, क्योंकि बाहरी चोट से ज्यादा दर्द उसे अंदरूनी चोट का हो रहा था, जो अयांश और उसके कहे एक एक लफ्ज ने दिया था। उसका मन पूरी तरह छलनी कर दिया था अयांश की बेरहमी ने। अयांश तेजी से चलता हुआ अंदर गया तो अचानक उसके कदम हॉल के बीच रुक गए। उसने दाईं ओर गर्दन घुमाई, अपनी नजर नीचे के सामने वाले कमरे पर डाली, जिसके दरवाजे के बीच एक 70 की उम्र का बुजुर्ग खड़ा था। उसने सफेद धोती कुर्ता पहना था, आंखों पर गोल चश्मा, सफेद सर के बाल, हाथ में छड़ी पकड़ी हुई थी। अयांश ने उनकी ओर देखा तो वो अयांश को देख मुड़कर वापस अपने कमरे में चले गए। उनकी छड़ी की आवाज अयांश को बाहर तक सुनाई पड़ रही थी। अयांश वहीं खड़ा कमरे की ओर देखता रहा। जैसे ही छड़ी की आवाज आना बंद हुई और उस कमरे की लाइट बंद हुई, वो वहां से सीढ़ियां चढ़ते ऊपर अपने कमरे में पहुंच गया। हाथ से जोर से धक्का देकर रूम का दरवाजा खोला। रूम में मध्यम सी लाइट चल रही थी। अयांश ने शेरवानी उतारकर रूम में जमीन पर फेंक दी और सीधा बाथरूम में चला गया और दीवार से दोनों हथेलियां लगाए सर झुका शावर ऑन कर अयांश खड़ा हो गया। कुछ देर बाद शावर लेकर ब्लैक लोअर टी शर्ट पहने अयांश बाथरूम से बाहर निकला। उसके बालों से पानी टपक रहा था, साथ उस मध्यम लाइट के बीच भी उसकी आंखों में बेहद गुस्सा दिखाई पड़ रहा था। कभी वो अपनी आंखें बड़ी कर रहा था तो कभी भौहें सिकोड़ रहा था। अपने दांत भींचते हुए वो अपने कमरे में गुस्से से इधर उधर चलने लगा। गुस्सा शायद आरवी को लेकर था, उसकी थूकने वाली हरकत को लेकर था। तभी अयांश ने अपने गीले बालों को हाथों से पीछे किया और बेड पर जाकर ब्लैंकेट ओढ़ लेट गया। कुछ पल रूम की लाइट जलती रही, फिर अयांश हाथ बढ़ाकर लाइट बंद कर देता है। पूरे कमरे में शांति के साथ अंधेरा पसर गया।
नीचे आरवी लॉन में जमीन पर ही पड़ी थी। जमीन पर ही पड़ी आरवी ने टसकते हुए अपनी आंखें खोली, अयांश के घर की ओर देखा और मन ही मन बोली, क्यों किया इसका जवाब नहीं देंगे, ये नहीं बताएंगे कुछ। मेरे लिए जानना जरूरी है, इनके लिए थोड़ी। मैंने ना कोई गलती की ना गुनाह, फिर भी इतनी बड़ी सजा। अपनी जिद से मगरूर ये अयांश मेहरा मुझे नहीं जाने देगा यहां से, पर मुझे यहां नहीं रहना। जिसके भर पल के साथ से घुटन होती है, जिसके पास होने से घिन आती है, मुझे उसके घर में मुझे नहीं रहना। मेरी हार और अपनी जीत से खुश है ना आप, पर यह आपकी सबसे बड़ी हार है, सबसे बड़ी मिस्टेक। कहते हुए आरवी नीचे से अपनी हथेली टिकाकर उठने लगी कि वो फिर जमीन पर गिर गई, पर फिर भी वो हिम्मत कर दर्द सहती हुई आह भरती टसकती नीचे से उठ खड़ी हुई और अपने हाथों से आंखों के किनारे साफ किए और आसमान की ओर देखते हुए बोली, बप्पा क्यों बनाई तुमने ये दुनिया? दुनिया बनाई तो बनाई, इतने बहरम बेदर्द लोग क्यों बनाए, जिन्हें दूसरों को क्या अपनों को भी दर्द देने में मजा आता है? एक बार भी जिसकी आत्मा उसे नहीं डांटती कि अपनों को तो बख्श दे, गैर तो क्या शिकायत करे इनसे, ये तो अपने करीबी का भी बुरा हाल कर देते हैं। कैसे ऐसे लोगों को धरती पर भेजते हो, दूसरों का जीना मुश्किल में डाल देते हो पप्पा। कहते हैं अच्छे लोगों के साथ आप कभी बुरा नहीं होने देते, फिर मेरी और सक्षम की इसमें क्या भनाई है, या हम अच्छे नहीं थे? कहते हैं जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है, फिर ये नीचे वाले अपनी मर्जी क्यों चलाते हैं? आप भगवान हो या ये इंसान जो खुद को ही भगवान मान बैठा है, फितरत जिसकी शैतान सी है? कौन सी परीक्षा ले रहे हो पप्पा हमारी? जरूरी होता है क्या अच्छे लोगों के बीच डेडल को लाना? और तो और, कमाल है आपकी बनाई दुनिया में, ऐसे घटिया लोग चैन से खुशी से रहते हैं और औरों का सब कुछ छीन लेते हैं, जिंदगी खुशियां सुख चैन सब कुछ। तभी आरवी ने एक ही झटके में हाथ से खींच अपने गले का मंगलसूत्र निकाल लिया। पहनूंगी तब फंदा होगा ना, नहीं चाहिए, कहते हुए अपने दोनों हाथों से आरवी ने मंगलसूत्र तोड़ फेंक दिया जिसके सारे मोती बिखर गए। नहीं चाहिए कहते हुए अपने हाथों से अपना सिंदूर पोंछने लगी और चिल्लाते हुए बोली, कोई मतलब नहीं है इस शादी का, इन सब का कोई मतलब नहीं, नहीं मानती मैं इस धोखे वाली झूठी शादी को, कोई मतलब नहीं इस सब का, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए ये सब। मैं जाऊंगी यहां से अयांश मेहरा इसी वक्त। और अपना भारी लहंगा संभालते हुए आरवी मेन गेट की ओर भागने लगी कि तभी